بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا، زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ آج کے کارکرم کا شبھ آرمبھ پویتر قرآن کے سورہ انفال کی دوسری، تیسری اور چوتھی آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں شری حشنگ محمد یون۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ لهم مغفرة ورزق كريم، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو اور بڑھا دیں، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہیں क्षमा और सम्मानित आजीविका है।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। आज मंगलवार है, आबान की 3, अक्टूबर की 25 और रबीउल अव्वल की 28 तारीख। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं, जबकि 30 अक्टूबर से आप हमारा ये कार्यक्रम शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9,620 किलोहर्ट्ज पर सुन सकेंगे। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पत्र व्यवहार के हमारे पते नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir, जबकि ताज़ा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट का पता है pastoday.com/hi और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 00989035065492। श्रोताओ, हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सदा की भांति आप सबसे पहले देश विदेश के समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम होगा, उसके पश्चात आप साप्ताहिक कार्यक्रम सुनेंगे कुरानी किस्से, और उसके पश्चात आप सुनेंगे सभा का दूसरा साप्ताहिक कार्यक्रम जैविक युद्ध का खतरा। श्रोताओ, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप मोहम्मद मेहदी से समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति ने कहा है कि पश्चिम ने आधिकारिक रूप से ऐलान किया है कि अधिकतम दबाव की नीति अपमानजनक ढंग से नाकाम हो गई है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन रेडियो एक्टिव बम दागने की तैयारी कर रहा है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत के अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में भीषण आग लग गई, जिसके कारण 700 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गईं। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद इब्राहिम रईसी ने कहा है कि पश्चिम ने आधिकारिक रूप से ऐलान किया है कि ईरान के खिलाफ अधिकतम दबाव की नीति अपमानजनक ढंग से नाकाम हो गई है और ईरानी लोगों के प्रतिरोध ने उसे विफल बनाया। राष्ट्रपति ने आज एशिया प्रशांत न्यूज एजेंसियों ओमाना के सम्मेलन में कहा कि दुनिया की आधी जनसंख्या इसी क्षेत्र से संबंधित है और इस क्षेत्र की एक सभ्यता व संस्कृति है और सांस्कृतिक जलवे हमारे क्षेत्र की विशेषता है। राष्ट्रपति ने क्षेत्रीय देशों व राष्ट्रों की स्वाधीनता व पहचान की सुरक्षा को संचार माध्यमों की बड़ी जिम्मेदारी बताया और कहा कि आज की दुनिया संचार माध्यमों की दुनिया है और हमारी संस्कृति को विशेषकर स्वतंत्र व स्वाधीन देशों की संस्कृति पर हमला किया गया है और वर्चस्ववादी शक्तियां दूसरे राष्ट्रों की सांस्कृतिक पहचान को मिटा देना चाहती हैं ताकि दुनिया और क्षेत्र में कोई स्वतंत्र देश न रहे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के हालात में संचार माध्यमों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी प्रकार राष्ट्रपति ने सांस्कृतिक आतंकवाद को एक प्रकार का आतंकवाद बताया और कहा कि कभी फिजिकल हत्या होती है, कभी व्यक्तित्व की हत्या की जाती है जो आरोप लगाकर की जाती है, कभी आर्थिक रूप से हत्या की जाती है, और इस प्रकार के वातावरण में संचार माध्यमों की बड़ी जिम्मेदारी है और वे राष्ट्रों के मूल्यों और मानवीय प्रतिष्ठा की रक्षा कर सकते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रपति ने कहा कि समस्त राष्ट्र न्याय के इच्छुक हैं और संचार माध्यम इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राष्ट्रपति ने तेहरान के खिलाफ अत्याचार पूर्ण प्रतिबंधों की ओर भी संकेत किया और कहा कि हम वार्ताओं में ईरानी राष्ट्र के अधिकार चाहते हैं और खेद के साथ कहना पड़ता है कि इससे पहले जो समझौता हुआ था उसमें हम अमेरिका और यूरोप की ओर से अपने वचनों पर अमल न करने के साक्षी थे और केवल जिस देश ने इस समझौते पर अपने वचनों पर अमल किया और उसमें किसी प्रकार का दिशा भेद नहीं था वो इस्लामी गणतंत्र ईरान है और परमाणु ऊर्जा की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की 15 बार की रिपोर्टें इस बात की गवाह हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम यूक्रेन के साथ संयुक्त बैठक में ड्रोन की बिक्री के दावे की समीक्षा के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन युद्ध में मदद के लिए हमने रूस को किसी भी तरह के ड्रोन और हथियार नहीं दिए हैं। इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया ने यूक्रेन युद्ध में ईरानी ड्रोन की बिक्री की अफवाहों के संबंध में सोमवार रात तेहरान में एशिया प्रशांत समाचार एजेंसियों की 18वीं महासभा के सदस्यों और निदेशकों के साथ बैठक में कहा कि ईरान ने यूक्रेन युद्ध में उपयोग के लिए किसी भी प्रकार के ड्रोन और हथियारों की आपूर्ति नहीं की है और न ही करेगा। हालांकि यूक्रेन युद्ध की परवाह किए बिना ईरान और रूस के बीच सहयोग जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि हम रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में रूस के साथ सहयोग कर रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि अतीत में हमने रूस से हथियार लिए और रूस को हथियारों की आपूर्ति की, लेकिन यूक्रेन युद्ध के दौरान हमने रूस को हथियार नहीं दिए। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया ने यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख के साथ अपनी हालिया बातचीत का उल्लेख करते हुए कहा कि जोसेफ बोरेल के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान हमने उनसे कहा कि हम यूक्रेन युद्ध में हस्तक्षेप करने के लिए ईरानी और यूक्रेनी सैन्य विशेषज्ञों की एक टीम का उपयोग करेंगे, साथ ही हम ईरान में ड्रोन के कथित इस्तेमाल की समीक्षा के लिए तैयार हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन युद्ध में ड्रोन के इस्तेमाल से संबंधित निराधार दावों के बारे में इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को किसी भी तरह की जांच से दूर रहना चाहिए। ईरानी राजदूत ने कहा कि इस तरह की जांच संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव नंबर 2231 के अंतर्गत भी अवैध है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को पश्चिमी देशों के एजेंडे पर अमल करने से बचना चाहिए। समाचार एजेंसी इरना की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ में इस्लामी गणतंत्र ईरान के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरवानी ने इस बात पर बल दिया कि पश्चिमी देश लगातार इस प्रयास में है कि सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव नंबर 2231 और यूक्रेन युद्ध में ड्रोन के इस्तेमाल के बीच झूठी और भ्रामक व्याख्याओं के आधार पर एक गलत और निराधार नैरेटिव ईरान से जोड़कर पेश करें। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध लगातार एक खतरनाक रूप लेता जा रहा है। इस बीच रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन अपनी जमीन पर एक रेडियो एक्टिव बम लगाने की तैयारी कर रहा है। ऐसा करके वो रूस पर इसकी जिम्मेदारी थोपना चाहता है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार रूस के रक्षा मंत्री ने रविवार को यूक्रेन युद्ध में तेजी से बिगड़ते हालात पर चर्चा करते हुए कहा, यूक्रेन एक डर्टी बम के जरिए संघर्ष को बढ़ा सकता है। डर्टी बम एक परमाणु बम जैसा होता है क्योंकि इसके फटने से भी रेडियो एक्टिव कचरा निकलता है। इसका विस्फोट परमाणु बम की तरह विनाशकारी नहीं होता, लेकिन इससे बड़े पैमाने पर रेडिएशन फैलता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रूस के रक्षा मंत्री ने यह भी दावा किया कि यूक्रेन इस बम का इस्तेमाल करके रूस पर आरोप लगाना चाहता है ताकि पूरी दुनिया रूस के खिलाफ हो जाए। नाबलस में आतंकी ज़ायनी सैनिकों के साथ संघर्ष में 26 फिलिस्तीनी शहीद और घायल हो गए हैं। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐलान किया है कि नाबलस में अवैध ज़ायनी शासन के आतंकी सैनिकों के साथ होने वाली झड़पों में 4 फिलिस्तीनी शहीद और 22 अन्य घायल हो गए। शहीद होने वालों में इस्लामिक प्रतिरोध बल ओरिनुल اسود کے یوا کمانڈر ودی اول حوز بھی شامل ہیں. وہیں گھائلوں میں چار کی استھی گمبھیر بنی ہوئی ہے. یہ سماچار آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں. اویس دانی شاسن کے بھوتپورو پردھان منتری نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل اور کچھ عرب دیشوں کے بیچ سعودی عرب کے گرین سگنل کے بعد ہی سمبندھ استھاپت ہوئے ہیں. سماچار ایجنسی ایڈنا کی رپورٹ کے انوسار اویس دانی شاسن کے بھوتپورو پردھان منتری بنیامین نیتن یاہو نے حال ہی میں اپنے ایک بیان میں ایک راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ میں آج ایک چیز سویکار کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آج جو کچھ عرب دیشوں کے ساتھ تل ابیب کے سمبندھ استھاپت ہوئے ہیں وہ کیول اور کیول آل سعود شاسن کے گرین سگنل کی وجہ سے سمبھو ہو پایا ہے. نتنیاہو نے کہا کہ ورش 2020 میں ابراہیم نامک سمجھوتا ہونے سے پہلے ہی سعودی عرب نے ہمارے لیے اپنی وایو سیما کھول دی تھی, جس کی وجہ سے ہم فارس کی کھاڑی کے دیشوں کی آسانی سے یاترا کر سکیں. میانمار کی سینا نے ایک سنگیت سماروہ پر حملہ کیا جس میں گائکوں اور سنگیتکاروں سہت 80 سے ادھک لوگوں کی موت ہو گئی. میانمار میں تختہ پلٹ کر ستہ میں آنے والی سینے سرکار دیش میں خون کی ہولی کھیلنا جاری رکھے ہوئے ہے. کلا سنگھ کے ایک پروکتا نے بتایا ہے کہ رویوار رات ہوئے ہوائی حملے میں 80 لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ لگ بھگ 100 انیہ گھائل ہو گئے. رشی سنک برٹن کے نئے پردھان منتری بن گئے ہیں. سنک کو منگلوار کو کنگ چارلس تریتی نے برٹن کا پردھان منتری نیوکت کیا. 42 ورشیہ سنک برٹن کے پہلے بھارتیہ مول کے پردھان منتری ہیں. رشی سنک نے پردھان منتری بننے کے بعد اپنے پہلے بھاشن میں کہا کہ ابھی ہمارا دیش ایک گہن آرتھک سنکٹ کا سامنا کر رہا ہے. اور انت میں یہ سماچار کی بھارت کے اروناچل پردیش کی راجدھانی ایٹانگر کے نہر لگن میں بھیشن آگ لگ گئی جس کے کارن 700 سے ادھک دکانیں جل کر راکھ ہو گئیں. ابھی تک کسی کے ہتاہت ہونے کی کوئی سوچنا نہیں ہے. بھارتی سوتروں کے انوسار شروعاتی 2 گھنٹوں میں کیول 2 دکانوں میں آگ لگی تھی, لیکن دمکل وبھاگ آگ کے پھیلاؤ پر قابو پانے میں وفل رہا. اروناچل پردیش کا یہ سب سے پرانا بازار راجدھانی ایٹا نگر سے لگ بھگ 14 کلومیٹر کی دوری پر استھت ہے. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے.
یہ تہران ہے اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز.
راجنیتک چرچا.
راجنیتک چرچا کے ساتھ میں اختر رضوی آپ کی سیوا میں اپستھت ہوں. میرا سلام سویکار کیجیے. ہماری آج کی چرچا کے وشے ہیں بھارت میں روشنی کا تہوار دیوالی منائی گئی اور لوگوں کی پرتکریائیں, افغانستان میں امریکی سینکوں کے ہاتھوں ماری گئی افغان بچی, اور بھارتی ملک کے پہلے برٹش پردھان منتری رشی سنک. تو سب سے پہلے بھارت کا وشے. دو ورش کے بعد بھارت میں پورے ہرش الاس کے ساتھ روشنی کا تہوار دیپاولی منائی گئی. اس پر کئی لوگوں کی پرتکریائیں سامنے آئی ہیں. وسترت رپورٹ کے ساتھ نئی دلی سے ہمارے سنواددتا شمشاد کاظمی.
दो वर्षों के अंतराल के बाद यद्यपि इस साल रोशनी का त्योहार दिवाली काफी धूमधाम से मनाया गया, लेकिन पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली में पटाखे जमकर छोड़े गए, जिससे पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर खतरनाक सीमा तक पहुंच गया। आज सवेरे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 323 रहा, जो बहुत खराब हवा की श्रेणी में आता है। दिल्ली और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रतिबंध के बावजूद कल देर रात तक पटाखे छोड़े गए। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 दर्ज किया गया है।
लेना चाहिए एक्शन इस पे कि भाई एक दिन पहले ही सब पे छापेमारी पे मारी करके सब पटाखे बंद करा दे, या फिर नोएडा से जो भी पटाखे आते रहते हैं उनको रोक लगाएं, तभी तो फिर दिल्ली में प्रदूषण रोक पाएंगे, हम ऐसे थोड़ी रोक पाएंगे।
दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पटाखे बेचने और इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, और उच्चतम न्यायालय ने भी राज्य सरकार के फैसले पर मोहर लगाते हुए पटाखे छोड़ने वालों से कहा था कि हमें सांस लेने दीजिए। दिल्ली के इंडिया गेट पर मनोरंजन के लिए आए आम लोगों का ये मानना है कि यद्यपि पटाखों के बिना दिवाली का रंग फीका पड़ जाता है, लेकिन सीमित स्तर पर इसके प्रयोग से पर्यावरण को अधिक नुकसान नहीं होगा।
हवा प्रदूषित हो रही है तो उसके जिम्मेदार हम सब है, क्योंकि हमें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए थे ज्यादा।
पर्यावरण प्रदूषण दिल्ली के लिए बड़ी समस्या रहा है, जो हर साल निकटवर्ती राज्यों में पराली जलाने और उद्योगों एवं गाड़ियों से निकलने वाले धुओं से बनता है।
बिल्कुल जरूरी है, बट अंडर कंट्रोल अगर चीजें किया जाए तो कोई बुराई नहीं। और रही बात पटाखे की, तो सब लोग अगर उस चीज का वो ले तो फायदा है, एक आदमी ले एक आदमी ना ले तो कोई उसका फायदा नहीं है ना।
इस वर्ष दिल्ली में अधिक वर्षा होने और पंजाब में 50% ही पराली जलाने से दिल्ली में हवा में प्रदूषण पहले की अपेक्षा कम रहा है। आम नागरिकों का कहना है कि मानवीय जीवन बहुत महत्व रखता है और हमें न्यायालय और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
और अब रुख करते हैं ब्रिटेन का। भारतीय मूल के ऋषि सुनक को भारत और दुनिया में किस तरह से देखा जा रहा है, एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी सैयद मीसम।
ऋषि सुनक को ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी का नेता घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद 42 वर्षीय सुनक ब्रिटेन के पहले एशियाई मूल के और हिंदू प्रधानमंत्री होंगे। इसी साल 6 जुलाई को ऋषि सुनक ने बोरिस जॉनसन की सरकार में वित्त मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद कई और मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था और आखिरकार प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को अपने इस्तीफे की घोषणा करनी पड़ी थी। जॉनसन के बाद आर्थिक संकट में फंसे ब्रिटेन की बागडोर लिज ट्रस ने संभाली, लेकिन सिर्फ 45 दिन बाद ही गुरुवार को उन्होंने भी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ऋषि भारतीय मूल की तीसरी पीढ़ी हैं। उनके दादा दादी ने भारत के विभाजन से पहले ही पाकिस्तानी पंजाब के गुजरांवाला शहर से ईस्ट अफ्रीका के लिए पलायन किया था। वो 1960 के दशक में इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर जाकर बस गए थे, जहां 1980 में ऋषि सुनक का जन्म हुआ। कई विशेषज्ञों का मानना है कि सुनक का प्रधानमंत्री बनना एक ऐतिहासिक क्षण होगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह अमेरिका में 2008 में बराक ओबामा के राष्ट्रपति चुने जाने के समय हुआ था। ऋषि सुनक से पहले भी दक्षिण एशिया के मूल के नेता बड़े पदों पर रहे हैं, वे मंत्री भी बने हैं और मेयर भी, जैसे कि प्रीति पटेल इस देश की गृह मंत्री हैं और सादिक खान लंदन के मेयर हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के पद का दावेदार अब तक कोई नहीं हुआ था। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार सुनक का उदय एशियाई समुदाय की कामयाबी से जुड़ा है। उनका कहना है कि ब्रिटेन के समाज में विविधता सुनक और खान जैसे नेताओं के उदय का कारण बनी है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक सुनक ने 2015 में बिजनेस स्टैंडर्ड को दिए इंटरव्यू में कहा था, मैं तो पूरी तरह से ब्रिटिश हूं, ये मेरा घर और देश है, लेकिन मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत भारतीय है, मेरी पत्नी भारतीय है, मैं हिंदू हूं और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सीनियर फेलो सुशांत सिंह ने सुनक का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी की बहुसंख्यकवाद और हिंदुत्ववाद की राजनीति पर सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा है, वर्तमान में भारत की केंद्र सरकार और सत्ताधारी पार्टी में देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय से कोई ना तो मंत्री है और ना ही सांसद। दूसरी तरफ ब्रिटेन में सुनक के उभार पर भारत में यही लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फूले नहीं समा रहे हैं। कांग्रेसी नेता शशि थरूर का भी कहना था कि अगर ब्रितानी लोग ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाते हैं तो ये दुनिया के लिए दुर्लभ घटना होगी, जहां सबसे ताकतवर पद पर एक अल्पसंख्यक होगा। जब हम ऋषि के भारतीय कनेक्शन पर खुश हो रहे हैं तो आइए ईमानदारी से पूछते हैं कि क्या ये भारत में संभव है।
और अब रुख करते हैं अफगानिस्तान का।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
अफगानिस्तान में अमरीकी सैनिकों के हाथों मारी गई अफगान बच्ची का मामला और भी गहराता जा रहा है। काबुल से IRIB के लिए बहनाम यजदानी की रिपोर्ट, साथी रविश जैदी की जबानी।
अफगानिस्तान में अमरीकी सैनिकों द्वारा एक अफगान बच्ची को चुराए जाने की घटना ने कई तरह के सवालों को उठा दिया है। वर्ष 2019 में अमरीकी सेना ने अपने हवाई हमले में एक बच्ची के परिवार के सभी लोगों, जिसमें उसके माँ बाप और 5 भाई बहन शामिल थे, सबको मौत के घाट उतार दिया था। तालिबान सरकार के विदेश मंत्रालय ने एक लिखित और वीडियो बयान जारी करके अमरीका से उस यतीम बच्ची को उसके करीबी रिश्तेदारों को वापस लौटाने की मांग की है। तालिबान सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि अमरीकी नौसेना के एक सैनिक द्वारा जिस बच्ची का अपहरण किया गया है उसे तुरंत उसके करीबी रिश्तेदारों को वापस किया जाए। ये एक अमानवीय और गैर कानूनी कार्य है। उस बच्ची को जितनी जल्दी हो वापस लौटाया जाए। यतीम बच्ची के रिश्तेदारों ने अमरीका के वर्जीनिया की एक अदालत में शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। यतीम अफगान बच्ची का अपहरण पिछले साल अमरीकी सैनिकों ने उस समय किया था जब अमरीका अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहा था और काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी की स्थिति थी। अमरीकी मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने यह घोषणा की है कि काबुल एयरपोर्ट से 1450 अफगान बच्चों को बिना उनके माँ बाप या फिर अभिभावकों की अनुमति के अमरीकी सैनिक अपने साथ ले गए हैं। ऐसी स्थिति में कि जब अमरीकी सैनिकों को अफगानिस्तान से गए हुए 14 महीने का समय बीत रहा है, हर कुछ समय में किसी न किसी अफगान बच्चे के गायब होने की खबर सामने आती है और पता चलता है कि उसको अमरीकी सैनिक अपने साथ ले गए हैं। इसी तरह सुहेल नामक एक बच्चा की, जिसके माँ बाप ने एक महीने की आयु में काबुल एयरपोर्ट पर अमरीकी सैनिकों को अपने बच्चे को दिया था, अभी कुछ ही महीने पहले वो काबुल में एक अन्य परिवार के पास मिला। जिनके पास वो बच्चा था उन्होंने उसका नाम अहमद रख दिया था। इसी तरह हजारों की संख्या में बच्चे अफगानिस्तान युद्ध के कारण दर बदर भटक रहे हैं। अमेरिका द्वारा 20 वर्षों तक अफगानिस्तान में किए गए हवाई हमलों में मरने और गायब होने वाले बच्चों का किसी के पास कोई सही आंकड़ा नहीं है। अफगान बच्चों के नरसंहार के आरोपियों की केस फाइल अभी बंद नहीं हुई है। एक अपाहिज बच्चे से जब ये पूछा गया कि तुम्हारा पैर कैसे कट गया तो उसने कहा कि अमरीकी हमले में। अफगानिस्तान के बच्चों पर जो अमरीकी सेना ने अत्याचार किए हैं उसकी गिनती इतनी लंबी है कि जितनी भी अमरीका को इसकी सजा दी जाए कम है। कुछ समय पहले एक अमरीकी सैनिक ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि अफगानिस्तान के शहरों और गाँवों की सड़कों और गलियों में आसमान से अगर हमें बारूदी सुरंग दिखाई देती थी तो हम ऊपर से ही टॉफियां फेंकते थे ताकि अफगान बच्चे उसको लेने के लिए जाएं और बारूदी सुरंगों के फटने के बाद हमारे सैनिकों के लिए रास्ता साफ हो जाए। काबुल से IRIB के लिए बहनाम यजदानी की रिपोर्ट।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, अब प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम कुरानी किस्से।
कुरान किस्से।
दोस्तों, साप्ताहिक कार्यक्रम कुरानी किस्से की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर है स्वाति और सैयद मैसाम का सलाम स्वीकार कीजिए।
आज के कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि पवित्र कुरान के सूरह फरकान की 43वीं और 44वीं आयतें कब नाजिल हुई थी। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि दुनिया में जो भी इंसान हैं वे अपनी आस्थाओं को विशेष महत्व देते हैं और वे इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते कि कोई उनकी आस्थाओं का अपमान करे या मजाक उड़ाए। अगर आपकी आस्था किसी दूसरे इंसान की आस्था से भिन्न है तो आपको दूसरे की आस्था का अपमान करने का कोई हक नहीं है। कोई अपनी आस्था का सम्मान कराने के लिए किसी दूसरे इंसान को मजबूर नहीं कर सकता, मगर वो इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि उसकी आस्थाओं का मखौल उड़ाया जाए, चाहे वो इस्लाम के उदय से पहले के अज्ञानी अरब रहे हों या आज के इंसान। कोई भी इस नियम से अपवाद नहीं है।
अज्ञानता के काल के अरब भी अपनी धार्मिक परंपराओं को बहुत ही अधिक महत्व देते थे और उनके प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील भी थे। अरब में जब सूखा व अकाल पड़ जाता था या इसी प्रकार आर्थिक मंदी हो जाती थी तो अज्ञानी अरब बूतों के पास जाते और उनसे सहायता मांगते थे। जब बूतों के पास जाने से भी उनकी कामना पूरी नहीं होती थी तो जो भी उनके आसपास होता था उससे सहायता मांगते थे। रोचक बात यह है कि जब कोई उनकी सहायता नहीं करता तो वे पहाड़ों और मरुस्थलों में जो पेड़ होते थे उन्हें पवित्र चीज समझकर उनसे मदद मांगते थे।
कुछ अरब अज्ञानी निर्धन होने के बावजूद मूर्तियों के सामने कुर्बानी करते थे और उसके खून को मूर्तियों पर मलते थे और कुर्बानी किए हुए जानवर को वहीं छोड़ देते थे। यही नहीं, जब उनमें से कोई बीमार होता था, यहाँ तक कि अपने बीमार जानवरों की शिफा के लिए निर्जीव मूर्तियों से सहायता मांगते थे और जब उनकी मुरादें पूरी नहीं होती थीं तो वे मूर्तियों से क्रोधित होकर उन्हें भी छोड़कर चले जाते थे।
एक बार की बात है कि एक अज्ञानी अरब का ऊंट बीमार हो गया था और वह अपने ऊंट को उस बूत के पास ले गया जिसे मुक्ति व कल्याण का चट्टान कहते थे। उसकी वजह यह थी कि वह बूत एक चट्टान के पास था। जब अज्ञानी अरब अपने ऊंट को उस बूत के पास ले गया तो वहां उसने अपने ऊंट को छोड़ दिया और एक शेर पड़ा जिसका अनुवाद इस प्रकार है, मैं मुक्ति व कल्याण के चट्टान की शरण में आया हूं ताकि वह मेरी समस्या व मुसीबत को दूर करे, परंतु मैं देख रहा हूं कि ऊंट भी उससे डर रहा है और मेरी मुसीबत अधिक हो गई है और यह पत्थर समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। बीमार ऊंट सही नहीं हो रहा है और मैं केवल हमारी गुमराही में वृद्धि कर रहा हूं।
बहुत से अज्ञानी अरबों के अपने विशेष बुत होते थे। वे काबे के पास उसे रख जाते थे और उस कबीले के लोग अपने ही बुत से मदद मांगते थे। वे दूसरे कबीलों के बुतों से मदद नहीं मांगते थे, उस पर चढ़ावा चढ़ाते थे, शिफा हासिल करने के लिए अपने आप को उन बेजान बुतों से मलते थे, बुतों से मस की गई चीजों को बड़े सम्मान व श्रद्धा से खाते थे। फुल्स नाम का एक प्रसिद्ध बुत था। वह बिल्कुल काला और इंसान के रूप में उसे तराश कर बनाया गया था और पहाड़ों के बीच में उसे रखा गया था। तय कबीले के लोग उसकी पूजा अर्चना करते थे, उसके लिए कुर्बानी करते और उस पर चढ़ावा चढ़ाते थे। इस बुत का उस कबीले के निकट बहुत सम्मान था। ये बुत उस कबीले के निकट इतना प्रतिष्ठित था कि अगर कोई बड़ा से बड़ा अपराध भी करके उसके पास चला जाता था तो कोई हाथ नहीं लगाता था।
रिवायत में है कि फुल्स बुत का जो मुतवल्ली था उसने एक महिला के ऊंट को फुल्स बुत के नाम वक्फ कर दिया। जिस महिला का ऊंट था वह बहुत परेशान हुई और उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसके ऊंट को किसी बुत के लिए वक्फ किया जाए। यह उसकी रोजी रोटी का जरिया था। महिला ने अपने ऊंट को बचाने के लिए अपने पड़ोसी से मदद मांगी। फुल्स बुत का जो मुतवल्ली था उसने इस बुत के सामने और हातमताई के बेटे अदि बिन ताई की उपस्थिति में उस आदमी के लिए बद्दुआ दी जो महिला की मदद के लिए आया था, परंतु उसकी बद्दुआ का कोई असर नहीं हुआ और मदद करने के लिए जो व्यक्ति गया था उसे कुछ भी नहीं हुआ।
दोस्तों, जब लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया कि जिसके लिए बद्दुआ की गई थी उसे कुछ भी नहीं हुआ, तो लोगों में फुल्स बुत की जो पवित्रता थी वो समाप्त हो गई। यही नहीं, फुल्स बुत का जो मुतवल्ली था उसकी भी वास्तविकता लोगों के सामने आ गई। हातमताई के बेटे अदि बिन ताई ने जब ये दृश्य देखा तो वो भी असमंजस का शिकार हो गया और उसने भी फुल्स बुत की पूजा करना छोड़ दी।
अबू ज़र गफ़ारी पैगंबर इस्लाम का एक महान निष्ठावान व अनुयायी व साथी था। वह भी रिवायत करते हैं कि इस्लाम धर्म स्वीकार करने से वर्षों पहले से मैंने बुतों की पूजा छोड़ दी थी। वह बुतों की पूजा छोड़ देने का कारण इस प्रकार बयान करते हैं। वह देखते हैं कि एक कबीले का कुत्ता फुल्स बुत के पास जाता है और उस पर गंदगी कर देता है, परंतु बुत की ओर से वह किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देखते हैं। वह यह देखकर सोचे पड़ जाते हैं कि जब यह बुत अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो हमारी और दूसरे इंसानों की रक्षा क्या करेगा। जो स्वयं अपनी रक्षा न कर सके वह उपासना का पात्र कैसे हो सकता है, उसकी कैसे उपासना की जाए।
इसी प्रकार एक अन्य रिवायत में है कि बनी हनीफा कबीले ने खजूर, आटे और तेल के मिश्रण का बुत बना रखा था। काफी दिनों से उसकी पूजा की जाती थी। एक समय वर्षा नहीं हुई जिसके नतीजे में अकाल पड़ गया और खजूर बहुत महंगी हो गई। जिन कबीलों के पास खजूर का बुत था उन्होंने बुतों के सामने बहुत दुआएं की, लेकिन वर्षा नहीं हुई। जो लोग खजूर के बुतों की पूजा करते थे उन्हीं लोगों में से एक परिवार के बच्चे ने खजूर से बने बुत से कुछ खजूरें निकाल कर खा ली। उस परिवार के लोगों को बड़ा क्रोध आया और वे सब डर गए कि अब खजूर निकालने वाले का कुछ हो जाएगा, लेकिन बच्चे का एक बाल भी बीका ना हुआ।
बहरहाल एक व्यक्ति ने बड़े क्रोध में कहा कि किसने हमारे बुत के अंदर से खजूर निकालने और उसका अपमान करने का दुस्साहस किया है। कहीं से कोई जवाब नहीं मिला तो वह छिप गया ताकि बुत के अंदर से खजूर निकालने वाले को पकड़ सके। जिस बच्चे ने बुत के अंदर से खजूर निकाला था उसने दोबारा ये काम किया। जो व्यक्ति चोर पकड़ने के लिए छिपा था उसने देखा कि मेरा बच्चा ही खजूर चुरा रहा है। बच्चा मुस्कुराया और उसने एक खजूर को अपने पिता की ओर बढ़ा दिया तो उसके बाप का गुस्सा ठंडा हो गया। वह समझ गया कि मेरे बेटे का इरादा चोरी करने का नहीं था, वह बहुत भूखा था इसीलिए ऐसा किया। बच्चे ने जो खजूर बाप को दिया था बाप ने उसे अपने मुंह में रख लिया और उसने अपने बच्चे से पूछा कि तुमने यह काम क्यों किया। इस पर बच्चे ने कहा कि चूंकि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है इसलिए हमने यह काम किया और अभी जो खजूर मैंने आपको दिया आपने उसे नहीं खाया। इस पर बाप ने कहा हाँ मैंने खा लिया परंतु हम अपने पुज्य को नहीं खा सकते। बच्चे ने कहा पिता आपको खुदा भी चाहिए और खजूर भी। इस समय खजूर तो उसे खा रहे हैं और जब वर्षा होगी तो खजूर के पेड़ से दोबारा खजूरें पैदा होगी तो दोबारा एक नया पुज्य बना लेंगे। बाप अचानक उठा और एक चाकू लेकर बुत को काट डाला और कहा कि जब बुत की कोई विशेषता ही नहीं और उसके अंदर किसी प्रकार की कोई ताकत व शक्ति नहीं तो इसे खाना ही चाहिए।
दोस्तों, आपने देखा कि अरब किसी तर्क के बिना बुतों की पूजा करते थे और उनसे अपनी मुरादें मांगते थे, जबकि वास्तविकता यह है कि बुतों के अंदर किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं होती। बुत निर्जीव होते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं होती, परंतु जो लोग बुद्धि से काम नहीं लेते वे बुतों की पूजा अर्चना करते हैं।
सारांश यह है कि बुतों की पूजा अर्चना आधारहीन व तर्क से परे कार्य है, जबकि पवित्र कुरान के सूरे फुरकान की 43वीं और 44वीं आयतों के नाजिल होने का आधार तर्क है। इन आयतों में महान ईश्वर कहता है कि हे पैगंबर, क्या आपने देख लिया उस व्यक्ति को जिसने अपनी इच्छा को अपना पूज्य बना लिया, तो क्या आप उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं, या आप समझते हैं कि उनमें से अधिकांश सुनते हैं या बुद्धि रखते हैं, वे केवल जानवर हैं बल्कि उनसे भी गुमराह व बदतर हैं।
पवित्र कुरान की इन आयतों से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, और बुद्धि वो अनमोल चीज है जिसे महान व सर्वसमर्थ ईश्वर ने हमारे अस्तित्व में रखा है, और रिवायतों में इसे नबी बातिन अर्थात आंतरिक नबी कहा गया है। जो इंसान सही से और किसी प्रकार के भेदभाव और अंधविश्वास से काम नहीं लेगा, वो बहुत अच्छी तरह इस बात को समझ जाएगा कि समस्त इंसानों को उसकी उपासना करनी चाहिए जिसमें हम सबको पैदा किया है और हम सबकी रचना है, ना कि उसकी जिसे हमने बनाया है, क्योंकि उपासना का पात्र निर्माता होता है ना निर्मित। मिसाल के तौर पर एक इंसान ने जहाज, घड़ी या मोबाइल बनाया, तो यहाँ पर अगर उपासना की जानी है तो जहाज, घड़ी और मोबाइल को इंसान की उपासना करनी चाहिए, ना कि इंसान जहाज, घड़ी या मोबाइल की उपासना करे। जो लोग बुतों की उपासना करते हैं उन्हें ये बात सोचनी चाहिए कि बुतों ने उन्हें बनाया है या उन्होंने बुतों को बनाया है, दोनों में उपासना का पात्र कौन है। इंसान को अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए, इंसान को अपनी बुद्धि से फायदा उठाना और काम लेना चाहिए। बुद्धि वो चिराग है जिसकी रोशनी में चलने वाला इंसान कभी गुमराह नहीं हो सकता, और जो लोग गुमराह हैं अगर वे अपनी बुद्धि से सही तरह से काम लें तो गुमराही के अंधकार से निकलकर सत्य के प्रकाश में आ सकते हैं।
तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम, जैविक युद्ध का खतरा।
जैविक युद्ध का खतरा।
प्रिय श्रोतागण, कार्यक्रम जैविक युद्ध का खतरा की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है। स्वाति और सैयद में शाम का सलाम स्वीकार कीजिए।
आज के कार्यक्रम में हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर कोई देश जैविक हथियारों की रोकथाम के लिए बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करता है तो इस पर अन्य देशों की क्या जिम्मेदारी बनती है, और उन्हें इन देशों के बारे में किस प्रकार की रणनीति अपनानी होगी, क्योंकि परमाणु हथियारों के बारे में किसी भी तरह का उत्पादन, शोध, हथियारों को विकसित करना और उन्हें अपने पास रखना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैर कानूनी काम है। अगर कहीं ये होता है तो इसकी रोकथाम के संबंध में देशों और सरकारों की जिम्मेदारियां होती हैं। सरकारों की दायित्वों से संबंधित दस्तावेज के पहले खंड में कहा गया है कि अगर कुछ सरकारें जैविक हथियारों से जुड़े नियमों का हनन करती हैं तो अन्य देशों की जिम्मेदारी है कि वे इसकी रोकथाम करें। वर्ष 2001 में पास होने वाले देशों के दायित्वों से संबंधित मसौदे के कुछ उसूल इस तरह हैं। अगर कोई देश नियमों का हनन करता है तो इस पर उस देश की अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही बढ़ जाएगी। किसी भी देश को उस समय हननकर्ता माना जाएगा जब वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार कोई गैर कानूनी काम कर दे या कानूनी जिम्मेदारी के तहत कुछ चीजों से परहेज करना हो मगर वो परहेज ना करे। किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार हननकर्ता घोषित किया जा सकता है, यानी कोई देश अपने आंतरिक कानूनों के आधार पर किसी अन्य देश को हननकर्ता नहीं घोषित कर सकता।
मसौदे के दूसरे खंड में इस बात का जायजा लिया गया है कि किसी भी देश को हननकर्ता घोषित करने के क्या उपाय हैं। इस खंड में कहा गया है कि अगर कोई गुट या सरकारी संस्थान नियमों का उल्लंघन करता है तो इस उल्लंघन में उस देश की सरकार को भी शामिल समझा जाएगा। मोटे तौर पर यह कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की दृष्टि से देखा जाए तो किसी भी देश की संस्थाओं, व्यक्तियों, नागरिकों, यहाँ तक के बाकी संगठनों के काम जो बाद में सत्ता संभाले, इस देश का काम समझा जाता है। कन्वेंशन के मसौदे के तीसरे खंड में जोर देकर कहा गया है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का उल्लंघन गैर कानूनी और इसे इस देश की सरकार की जिम्मेदारी माना जाएगा। जब किसी देश के हाथों किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का हनन, यह होता है कि उस देश की सरकार का काम और क्रियाकलाप अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुरूप न हो। इस तरह बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन BWC के सदस्य देश की तरह से कोई ऐसा काम किया जाता है जो BWC के विपरीत हो तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का हनन माना जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस देश की जवाबदेही होगी।
BWC के चौथे खंड में इस बात का जायजा लिया गया है कि अगर कन्वेंशन में शामिल कोई देश इसका हनन करता है तो अन्य सदस्य देशों की उस देश के बारे में क्या जिम्मेदारी होगी। इस आधार पर अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून के हनन में कोई देश दूसरे देश का सहयोग कर रहा है या साथ दे रहा है तो सहयोग करने वाले देश को भी हननकर्ता ही माना जाएगा। अब इस नियम की रोशनी में अगर जायजा लिया जाए कि अमेरिका की तरफ से ज़ायोनी शासन के साथ जो सहयोग हो रहा है और जिसके नतीजे में ज़ायोनी शासन जैविक हथियारों का निर्माण कर रहा है, या ब्रिटेन और अमेरिका के सहयोग से बायोलॉजिकल प्रयोगशाला का निर्माण किस कैटेगरी में आएगा, तो साफ पता चल जाएगा कि ये देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कन्वेंशनों का हनन कर रहे हैं। सरकारों की जवाबदेही निर्धारित करने वाले मसौदे के पांचवें खंड में कहा गया है कि कोई ये बहाना नहीं कर सकता कि उसके पास नियम का हनन करने के अलावा कोई चारा नहीं था, यानी उसने मजबूरी में ये काम किया है। इस तरह का कदम उठाने वाले देश की पूरी जवाबदेही होगी। इस खंड में अलग अलग परिस्थितियों का जायजा लिया गया है और ये नतीजा निकाला गया है कि कोई भी परिस्थिति हो, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हनन को हरगिज नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
सरकारों की जवाबदेही निर्धारित करने वाले मसौदे के दूसरे खंड में इस बात का जायजा लिया गया है कि एक देश की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों और दायित्वों का क्या मतलब है। इस खंड में हननकर्ता देशों को बाध्य किया गया है कि वे तत्काल हनन की प्रक्रिया पर रोक लगाएं और इस बात को सुनिश्चित करें कि दोबारा उनसे हनन की कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। मसौदे के आर्टिकल नंबर 31 में नुकसान की भरपाई का जायजा लिया गया है और जिस देश ने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का हनन किया है उसके लिए जरूरी है कि इस हनन से होने वाले नुकसान की पूरी तरह भरपाई करे। इस नुकसान में भौतिक और मानसिक व नैतिक हर प्रकार का नुकसान शामिल है। इसी भाग में यह भी कहा गया है कि कोई भी देश अपने आंतरिक कानूनों को बहाना बनाकर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और कन्वेंशनों के हनन का औचित्य नहीं दे सकता। इस नज़र से देखा जाए तो अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ अन्य देश जैविक प्रयोगशाला जिस तरह चला रहे हैं उससे इन देशों की जिम्मेदारी है कि बायोलॉजिकल हथियार कन्वेंशन के आधार पर मेजबान देश को होने वाले नुकसान की पूरी तरह भरपाई करें।
पूरे मानव समाज के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर देने वाले मुद्दों में से एक जैविक हथियार है। इस समस्या के अलग अलग पहलुओं की समीक्षा पर आधारित है कार्यक्रम जैविक युद्ध का खतरा। हर हफ्ते मंगलवार को
मेजबानी करने वाले या किसी तरह से भी नुकसान उठाने वाले देशों को अधिकार है कि वे हर जाने की मांग कर सकते हैं। चूंकि अमरीका ने जॉर्जिया में अपनी कई जैविक प्रयोगशालाएं बना रखी हैं, इसलिए इस देश के स्वतंत्र गलियारे बार बार मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले तो अमरीका ये काम करे कि जॉर्जिया में मौजूद जैविक प्रयोगशालाएं को पूरी तरह से खत्म करे, उसके बाद ये जायजा लिया जाए कि इन प्रयोगशालाओं की गतिविधियों से देश के पर्यावरण और इंसानों को क्या संभावित नुकसान पहुंचा है, फिर इस नुकसान की भरपाई की जाए। वाशिंगटन पर लंबे समय से जॉर्जिया के अनेक गलियारे दबाव डाल रहे हैं कि देश को खतरे में डालने वाली प्रयोगशालाओं की गतिविधियों को बंद किया जाए, मगर अमरीका इन मांगों को नजरअंदाज करता रहता है। यही नहीं, इस तरह की मांग करने वालों की आवाज को दबाने और उन्हें हराश व निराश करने की भी कोशिशें होती हैं।
मसौदे में अलग अलग परिस्थितियों का जायजा लिया गया है और इस बात की संभावना को भी मद्देनजर रखा गया है कि अगर एक साथ दो देश नियमों का हनन करते हैं और एक दूसरे की गतिविधियों से एक दूसरे को नुकसान पहुंचता है तो इस स्थिति में कैसे जवाबदेही तय की जाएगी और किस तरह हर्जाना अदा किया जाएगा। मगर समस्या ये है कि कानून, समझौते और कन्वेंशन तो बहुत अच्छे अच्छे मौजूद हैं जो बड़ी मेहनत से तैयार किए गए हैं, लेकिन यह देखना महत्वपूर्ण है कि इन समझौतों पर किस हद तक अमल हो पाता है। बड़ी ताकतें अलग अलग संसाधनों का इस्तेमाल करके अपनी मनमानी के रास्ते खोल लेती है। यही वजह है तो कि बड़े बड़े युद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति के बगैर लड़ लिए गए।
सरकारों के दायित्वों के मसौदे के आधार पर सरकारों के तहत काम करने वाले संगठनों या व्यक्तियों की गतिविधियां उस सरकार का उल्लंघन और हनन मानी जाएंगी। चूंकि जैविक हथियारों से होने वाले नुकसान का भौतिक दृष्टि से भरपाई संभव नहीं है, क्योंकि इसके विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं कि बहुत लंबे समय तक रहें, इसलिए सरकारों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। सरकारों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे किसी भी तरह का संकट न पैदा होने दें, और अगर जैविक संकट की बात है तो जिम्मेदारी और भी संवेदनशील हो जाती है। इस तरह के हालात में जाहिर है कि नुकसान बहुत ज्यादा होता है और लंबे समय तक बाकी रहता है। इससे केवल वर्तमान नस्ल नहीं बल्कि आने वाली नस्लें भी प्रभावित होती हैं। समस्या यहाँ पर यह है कि कुछ देश सारी दुनिया को ये मनवाने की कोशिश करते हैं कि वे बहुत जिम्मेदार देश हैं, यानी अगर उन्होंने कुछ समझौतों को नहीं पारित किया तो दूसरे देश इस पर आपत्ति न करें क्योंकि ये जिम्मेदार देश हैं। इस तरह के रवैये की वजह से भी बहुत से अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और कन्वेंशनों को नुकसान पहुंचा है।
श्रोताओं, चूंकि जैविक हथियारों से पर्यावरण को भी खतरा पहुंचता है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद कई समझौते और नियम भी हैं जो सरकारों के दायित्वों को बढ़ा देते हैं। यानी सरकारों की जवाबदेही BWC के साथ ही पर्यावरण के जुड़े समझौतों और कन्वेंशनों के प्रति भी बढ़ जाती है। मसौदे के अनुसार अगर किसी सरकार के नियमों का हनन किया है तो सबसे पहले उसके लिए जरूरी हो जाता है कि हनन की प्रक्रिया को तत्काल बंद करे और इस संदर्भ में जरूरी गारंटी भी दे। उस सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आइंदा उसकी तरफ से हनन की कोई भी कार्रवाई हरगिज अंजाम नहीं पाएगी।
जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय के कानूनविद मार्कोस ओरेलाना का मानना है कि जिस तरह संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने जोर दिया है कि जलवायु को बदलने वाले प्रभाव, इसी तरह सामरिक जैविक गतिविधियों के असर से मानवाधिकार भी प्रभावित होते हैं, यानी इन गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों के कारण प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से लोगों के सामने रुकावटें खड़ी हो जाती हैं और वे पूरी तरह मानवाधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते। जो लोग अधिक खतरे वाले दायरे में हैं, जैसे स्थानीय लोग, वृद्धावस्था वाले लोग, गरीब, अपंग आदि, उन पर इन गतिविधियों का ज्यादा नकारात्मक असर पड़ता है। इस तरह देखा जाए तो इस हनन के नतीजे में मानवाधिकार भी प्रभावित होते हैं।
श्रोताओं, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में हम एक बार फिर जैविक हथियारों के खतरों और इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और देशों की जिम्मेदारियों के बारे में बताएंगे। तो अगले कार्यक्रम तक हमें अनुमति दीजिए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम जैविक युद्ध का खतरा। और अब समय मुख्य समाचारों की सारांश का। राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद इब्राहिम रईसी ने कहा है कि पश्चिम ने आधिकारिक रूप से ऐलान किया है कि ईरान के खिलाफ अधिकतम दबाव की नीति अपमानजनक ढंग से नाकाम हो गई है और ईरानी लोगों के प्रतिरोध ने उसे विफल बनाया है। राष्ट्रपति ने आज एशिया प्रशांत न्यूज एजेंसियों ओआना के सम्मेलन में कहा कि दुनिया की आधी जनसंख्या इसी क्षेत्र से संबंधित है और इस क्षेत्र की एक सभ्यता संस्कृति है और सांस्कृतिक जलवे हमारे क्षेत्र की विशेषता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में भीषण आग लग गई जिसके कारण 700 से अधिक दुकानें जलकर राख हो गईं। रूस ने कहा है कि यूक्रेन रेडियो एक्टिव बम दागने की तैयारी कर रहा है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आपने शॉर्ट वेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुना। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आया होगा। पत्र व्यवहार के हमारे पते नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir, जबकि ताज़ा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। तो श्रोताओ, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। खुदा हाफिज। Thank you.